नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में आज प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव सहित विभिन्न आयोजन। मुख्यमंत्री ने हर साल 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साइबर अपराध और जलवायु परिवर्तन को मानवाधिकारों के लिए नई चुनौतियां बताया। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के 7वें संस्करण का ग्रैंड फिनाले कल से देशभर के 51 केंद्रों पर शुरू होगा। और अजमेर में 13 दिसंबर को राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। जयपुर में चल रहे राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दूसरे दिन की शुरुआत प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव से हुई। कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि राजस्थानी जहां जहां जाकर बसे हैं वहां की अर्थव्यवस्था में सुधार किया है। उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों पर राजस्थान का अधिकार है। उन्होंने प्रवासियों का आह्वान किया कि वे मातृभूमि का ऋण चुकाने के लिए यहां निवेश करें। समिट को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए एक विशेष विभाग बनाया जाएगा। साथ ही 10 दिसंबर को हर साल प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में पहली बार हर साल प्रवासी राजस्थानी सम्मान देने का निर्णय लिया है। प्रवासी राजस्थानियों के परिवारों को किसी तरह की समस्या आती है तो इसके लिए हर जिले में सिंगल प्वाइंट कॉन्टेक्ट बनाया जाएगा। श्री शर्मा ने राजस्थान में अपार संभावनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि यहां का हर कोना अपनी समृद्ध धरोहर प्रकृति, संस्कृति और विविधताओं का दर्शन करवाता है। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने निवेशकों के लिए एक ऐसा माहौल तैयार किया है जहां उन्हें सभी सुविधाएं मिलेंगी।
हम प्रवासी राजस्थानियों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक विशेष विभाग भी बना रहे हैं, जिससे कि वो विभाग पूरी तरह से हमारे प्रवासी भाइयों का ध्यान रखे। ये विभाग प्रवासी राजस्थानियों के व्यवसायिक और सामाजिक प्रयासों में सहयोग आदान प्रदान करेगा और राजस्थान में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और नवाचार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रवासी राजस्थानियों की विशेष संसाधनों का उपयोग भी करेगा।
कार्यक्रम को सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर ने भी संबोधित किया। उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों से कहा कि वे साल में एक बार जरूर अपने गांव जाएं और सब मिलकर राजस्थान को हिंदुस्तान का नंबर एक प्रदेश बनाने का संकल्प लें। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रवासी उद्योगपति निर्मल कुमार सेठिया समेत अन्य प्रवासी राजस्थानियों ने भी अपने विचार रखे। इससे पहले पश्चिमी राजस्थान के 108 लंगा और मांगणियार बाल कलाकारों ने पधारो महारे देश लोकगीत की मनमोहक प्रस्तुति दी। कॉन्क्लेव में इसके अलावा और भी अन्य आयोजन हुए, जिनकी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
प्रवासी कॉन्क्लेव के अलावा सम्मेलन में आज विभिन्न क्षेत्रों पर आधारित 7 सत्र आयोजित हुए। सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग पर आयोजित सत्र में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि राजस्थान अब केवल रेगिस्तान नहीं बल्कि उभरते हुए अवसरों की भूमि है। कृषि पर केंद्रित एक सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषकों की आय बढ़ाने और कृषि कल्याण के लिए केंद्र सरकार की ओर से उठाए जा रहे विभिन्न प्रयासों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कुछ देर पहले सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विषय पर भी एक सत्र आयोजित किया गया। सत्र में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपने विचार साझा किए। इसके अलावा अमेरिका, मलेशिया, जर्मनी, सिंगापुर तथा कोरिया देशों पर केंद्रित सत्रों में प्रदेश में इन देशों के लिए निवेश की संभावनाओं के बारे में विस्तार से मंथन किया गया। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी के अधिकारों और गरिमा की सुरक्षा के मद्देनजर समान डिजिटल वातावरण सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि साइबर अपराध और जलवायु परिवर्तन मानवाधिकारों के लिए नई चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग परिवर्तनकारी है, लेकिन इससे साइबर बुलिंग, डीप फेक, गोपनीयता संबंधी चिंताएं और गलत सूचना के प्रचार जैसे मुद्दे भी सामने आए हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने गरीबी और भुखमरी को समाप्त करने तथा युवाओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए नीतियां लागू करके दुनिया के सामने उदाहरण पेश किया है।
हमें प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को बनाए रखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी पीछे ना छूटे। एक साथ निरंतर प्रयास और एकजुटता के माध्यम से हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं जिसमें हर व्यक्ति उम्र, पृष्ठभूमि या परिस्थिति की चिंता किए बिना सम्मान, अवसर और पूर्णता का जीवन जीने के लिए सशक्त रहे।
राष्ट्रपति ने मानवाधिकार उल्लंघनों को दूर करने, जागरूकता लाने और हाशिए पर मौजूद लोगों के अधिकारों को बनाए रखने के लिए नीतिगत बदलावों की सिफारिश करने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सराहना की। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। करौली, सवाईमाधोपुर और पाली सहित कुछ जिलों में विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल जयपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे जयपुर में एक कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन SIH 2024 के सातवें संस्करण का ग्रैंड फिनाले कल देश भर के 51 केंद्रों पर शुरू होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस कार्यक्रम का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इस ग्रैंड फिनाले में 1300 से ज्यादा विद्यार्थी टीमें हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ग्रैंड फिनाले में युवा नवोन्मेषकों के साथ बातचीत करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। इस साल 54 मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों और उद्योगों ने 250 से ज्यादा समस्या संबंधी वक्तव्य जमा कराए हैं। जयपुर का मणिपाल विश्वविद्यालय स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के 51 केंद्रों में शामिल है। इस केंद्र के नोडल अधिकारी दिनेश कुमार सैनी ने बताया कि ये केंद्र ग्रैंड फिनाले की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है।
यह आयोजन 5 दिनों तक चलेगा। इसमें कुल 156 प्रतियोगी भाग ले रहे हैं, जिसमें से 100 पुरुष और 56 महिला छात्र शामिल हैं। सभी देश भर के विभिन्न संस्थानों और विश्वविद्यालयों के 35 मेंटर्स भी इस आयोजन में हिस्सा लेंगे। हमारे पास 5 मिनिस्ट्री की प्रॉब्लम्स हैं और टोटल 68 प्रॉब्लम्स हैं पूरे हार्डवेयर सेक्शन में। इस आयोजन का उद्देश्य छात्रों के भीतर नवाचार और तकनीकी कौशल को बढ़ावा देना है। वे अपनी रचनात्मक और तकनीकी ज्ञान का उपयोग कर वास्तविक समस्याओं का व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करेंगे।
अजमेर में 13 दिसंबर को राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन राज्य की भजनलाल शर्मा सरकार के एक साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में बड़ी संख्या में किसान और पशुपालक भाग लेंगे। सम्मेलन की तैयारियों के लिए संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा और अन्य अधिकारियों ने कार्यस्थल का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित मंत्रीगण और जनप्रतिनिधि भाग लेंगे। इस मौके पर राज्यभर से 1,13,700 किसानों को लाभान्वित किया जाएगा और सरकार करीब 504 करोड़ रुपए का लाभांश किसानों को देगी। दौसा जिले के कालीखाड़ गांव में बोरवेल हादसे में बच्चे को सकुशल बाहर निकालने के लिए सरकार ने तेजी से राहत और बचाव कार्य शुरू किया है। आपदा राहत मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने बताया कि विभाग की ओर से दौसा जिला प्रशासन को 10 लाख रूपये जारी किए गए हैं ताकि राहत और बचाव कार्य में तेजी लाई जा सके। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम में आज उनके विभाग के प्रेजेंटेशन के समाप्त होते ही वे कालीखाड़ गांव जाएंगे। उन्होंने पीड़ित परिवार को जरूरत पड़ने पर इस काम में और संसाधन लगाने का भरोसा दिलाया। गौरतलब है कि कल 5 साल का बच्चा आर्यन 160 फुट गहरे बोरवेल में गिर गया था। रसद विभाग ने सक्षम परिवारों के लिए एनएफएस योजना से नाम हटवाने के लिए गिव अप अभियान शुरू किया है। सलूम्बर जिला रसद अधिकारी दीपक कोल्हार ने बताया कि अभियान के तहत अपात्र लाभार्थियों से स्वेच्छा से नाम हटवाने की अपील की जा रही है। अपात्र परिवारों में आयकरदाताओं, सरकारी या अर्ध सरकारी नौकरी करने वालों, 1 लाख रूपये से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय वालों या 4 पहिया वाहन मालिकों को रखा गया है। पाली संभाग में कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का गठन किया गया है, जिसमें रेंज के सभी जिलों से चयनित 44 महिला पुलिस कर्मियों को शामिल किया गया है। इन चयनित महिला पुलिस कर्मियों को रेंज कार्यालय में 1 दिन का प्रशिक्षण दिया गया। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों और शैक्षणिक संस्थानों पर महिलाओं और बालिकाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ और अन्य अप्रिय घटनाओं की रोकथाम करना है। भरतपुर के रामेश्वरी देवी कन्या महाविद्यालय में छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने के लिए एक शिविर का शुभारंभ किया गया। ये शिविर रानी लक्ष्मीबाई केंद्र योजना के तहत आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए सक्षम बनाना है। चूरू जिले में बीएसएनएल की 4G सेवा शुरू कर दी गई है। यह सेवा जिले के 101 गांवों में उपलब्ध होगी। जिले की राजगढ़ तहसील को छोड़कर 6 ब्लॉक्स में यह सेवा उपभोक्ताओं को मिलेगी। इसके लिए 45 टावर्स को अपग्रेड किया गया है, जबकि 5 नए टावर लगाए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में आज प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव सहित विभिन्न आयोजन। मुख्यमंत्री ने हर साल 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साइबर अपराध और जलवायु परिवर्तन को मानवाधिकारों के लिए बड़ी चुनौती बताया। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के 7वें संस्करण का ग्रैंड फिनाले कल से देश भर के 51 केन्द्रों पर शुरू होगा। और अजमेर में 13 दिसंबर को राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।